الرحمن الرحیم، السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 6 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب اللہ کی تلوار ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کی تالیف ابو زید شبلی نے کی ہے. یہ کتاب آپ کے لیے کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مسلمہ کذاب. دیگر قبائل کی طرح بنو حنیفہ کا بھی ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. اس وفد میں مسلمہ کذاب بھی تھا. مدینے پہنچ کر باقی لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلے گئے، لیکن مسلمہ ان کی سامان کی رکھوالی کے لیے ڈیرے پر ہی ٹھہرا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وفد نے اسلام قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ مال مرحمت فرمایا. انہوں نے مسلمہ کا بھی ذکر کیا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حصہ بھی اس کے ساتھیوں کو دیا اور فرمایا، وہ ایسا شخص نہیں ہے جو ساتھیوں کے سامان کی رکھوالی کرنے کے لیے پیچھے چھوڑ دیا جائے. جب بنو حنیفہ اپنے قبیلے میں واپس پہنچے تو مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور وفد سے کہا، کیا تم لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا کہ وہ ایسا شخص نہیں ہے جو ساتھیوں کے سامان کی رکھوالی کرنے کے لیے پیچھے چھوڑ دیا جائے؟ وہ میرا مرتبہ پہچانتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ میں ان کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہوں. اس نے بعض مسجع مقنع عبارتیں بنا کر اپنی قبیلے کے سامنے بطور وحی پیش کی، اور شراب اور زنا وغیرہ مفاسد کو ان کے لیے حلال قرار دیا. بنو حنیفہ نے اس کی اطاعت قبول کر لی اور اسے ہر قسم کی مدد دینے کے لیے تیار ہو گئے. اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط بھیجا جس کا مضمون یہ تھا. یہ خط مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ خط مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے. آپ پر سلامتی ہو. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے نبوت میں آپ کا شریک کیا گیا ہے. نصف زمین میری ہے اور نصف قریش کی، لیکن قریش بہت زیادتی کرنے والی قوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى مسلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى، اما بعد فان الارض لله يورثها من يشكر عباده والعاقبة للمتقين. ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمہ کذاب کے نام ہے. سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی. اس کے بعد واضح ہو کہ زمین اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے. انجام انہی کا بہتر ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمہ کا فتنہ اور بھی زور پکڑ گیا. اس فتنے کو بھڑکانے میں زیادہ حصہ رحال بن انفوا کا تھا. یہ شخص ہجرت کر کے مدینہ میں مقیم ہو گیا تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر قرآن کریم اور دین کا علم حاصل کیا. جب اہل یمامہ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبیلہ مذکور کی تعلیم و تربیت اور دین سکھانے کے لیے ان کے ساتھ روانہ کر دیا. وہاں پہنچ کر بجائے اس کے کہ وہ اپنا مفوضہ کام سر انجام دیتا، اس نے مسلمہ کی مدد کرنا شروع کر دی اور قبیلے کے سامنے اس بات کی گواہی دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، مسلمہ کو آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہے. اہل یمامہ کے لیے مسلمہ کے حق میں اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جوک در جوک مسلمہ کی اطاعت قبول کرنے لگے اور اس طرح ایک زبردست فتنہ اٹھ کھڑا ہوا. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف امراء کو مرتدین سے لڑنے کے لیے جھنڈے مرحمت فرمائے तो अकरमा बिन अबू जहल को मुसलिमा से जंग करने के लिए रवाना किया था। अकरमा की मदद के लिए आपने शुरजील बिन हसना को कुछ फौज देकर उनके पीछे पीछे रवाना फरमाया। अकरमा ने इस ख्याल से कि मुसलिमा की सरकोबी का फखर तन्हा उन्हीं के हिस्से में आए, शुरजील की आमद का इंतजार न किया और बनू हनीफा पर धावा बोल दिया। बनू हनीफा भी कुछ कम तैयार न थे, उन्होंने जबरदस्त हमला करके अकरमा की फौज को पीछे हटा दिया। जब हजरत अबू बकर रजिला ताला अन्हों को हजरत अकरमा रजिला ताला अन्हों की हजीमत की खबर पहुंची, तो आपने शुरजील बिन हसना रजिला ताला अन्हों को लिखा कि वो अपनी पेश कदमी को मौकूफ करके इस कुमक का इंतजार करें जो खालिद रजिला ताला अन्हों की सरकर्दगी में भेजी जा रही है। शुरजील को चाहिए था कि वो अकरमा की शिकस्त से नसीहत हासिल कर लेते, लेकिन उनसे भी वही गलती सरजद हुई जो अकरमा रजिला ताला अन्हों से हुई थी। उन्होंने भी हजरत खालिद रजिला ताला अन्हों की आमद का इंतजार किए बगैर मुस्लिमा की फौज पर हमला कर दिया। मुस्लिमा की फतहयाब फौज के मुकाबले में शुरजील रजिला ताला अन्हों की फौज भी ठहर ना सकी और इसे भी शिकस्त खाकर पीछे हटना पड़ा। खालिद रजिला ताला अन्हों को अबू बकर सिद्दीक रजिला ताला अन्हों ने मालिक बिन नुवैरा के कत्ल की जवाबदही के लिए मदीना तलब फरमाया था। हजरत खालिद रजिला ताला अन्हों के उजर को कबूल करने के बाद आपने उन्हें मुस्लिमों से लड़ने के लिए यमामा जाने का हुक्म दिया और मुहाजरीन और अंसार की एक जमीयत आपके साथ रवाना कर दी। अंसार पर साबित बिन कैस बिन शिमास अमीर थे और मुहाजरीन पर अबू हुजैफा और जैद बिन खत्ताब रजिला ताला अन्हों। मुहाजरीन और अंसार के अलावा जो दूसरे कबाइल इस गिरोह में शामिल थे, इनमें से हर एक पर एक एक अमीर मुकर्रर था। हजरत खालिद रजिला ताला अन्हों मदीने से कूच करके बताह पहुंचे और वहां लश्कर की तंजीम नौ की। इसके बाद आगे बढ़े और मुस्लिमा के इलाके में पहुंच गए। अबू बकर सिद्दीक रजिला ताला अन्हों ने खालिद रजिला ताला अन्हों के रवाना होने के बाद सुलैत को मुसलमानों की एक जमात के साथ रवाना किया और उन्हें हुक्म दिया कि वो अकब में रहकर उसकी हिफाजत करें ताकि दुश्मन मुसलमानों की फौज पर बेखबरी में पीछे से हमला ना कर सके। जब खालिद रजिला ताला अन्हों शुरजील रजिला ताला अन्हों के पास पहुंचे और उन्हें उनकी शिकस्त का हाल मालूम हुआ, तो वो शुरजील रजिला ताला अन्हों पर बहुत नाराज हुए कि उन्होंने खलीफा के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हुए मुस्लिमा की फौज पर तन्हा हमला क्यों कर दिया और उनके आने का इंतजार क्यों नहीं किया। जब मुस्लिमा को हजरत खालिद रजिला ताला अन्हों की आमद का हाल मालूम हुआ, तो वो 40,000 की एक अजीम जमीयत लेकर निकला और अकरबा में पड़ाव डाला। अकरबा यमामा की एक बस्ती है जो नबाज के रास्ते में बढ़ती है, अलगर्ज के जिले में करकरी के करीब वाक़े है। ये जगह यमामा की सरहद पर है और यमामा का जरखेज इलाका इसके वरे है। मुस्लिमा ने यहाँ इसलिए पड़ाव डाला था कि मुसलमान यमामा की सरजमीन को रौंद न सकें और वो तख्तो ताराज होने से बच सके। हजरत खालिद रजिला ताला अन्हों ने भी अपनी फौज के हमरा वहां पड़ाव डाला। दोनों फौजें मैदान में निकली। हजरत खालिद रजिला ताला अन्हों ने मैमना और मैसरा पर जैद बिन खत्ताब और अबू हुजैफा रजिला ताला अन्हों को मुकर्रर किया। खुद मुकदमा पर थे, शुरजील रजिला ताला अन्हों भी मुकदमा पर थे। उधर मुस्लिमा के मैमना और मैसरा पर मुहक्कम अल यमामा और रहाल बिन अनफुआ मुकर्रर थे। रहाल बिन अनफुआ ही सबसे पहले मैदान जंग में मुसलमानों के मुकाबले के लिए निकला। उसे अब्दुल रहमान बिन अबू बकर ने तीर मारकर हलाक कर दिया। जंग शुरू हुई। रफ्ता रफ्ता लड़ाई में शिद्दत पैदा होती गई। दोनों फरीकों में से कोई फरीक भी पीछे हटने के लिए तैयार न था। दोनों तरफ से सरधड़ की बाजी लगी हुई थी। हजरत खालिद बिन वलीद रजिला ताला अन्हो तमाम सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए थे। कुछ देर के बाद उन्होंने महसूस किया कि अगर लड़ाई इसी शिद्दत से जारी रही और बनू हनीफा इसी तरह बेजिगरी से मुकाबला करते रहे, तो मुहाजरीन और अंसार को छोड़कर दीगर कबाइल अरब जो फौज में शामिल हैं हिम्मत हार बैठेंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि वो मुहाजरीन और अंसार की ताकत को भी कम कर देंगे। इस तरह लश्कर के नज्म जब्त में सख्त खलल वाक़े हो जाएगा और शिकस्त यकीनी हो जाएगी। इस मौके पर उन्होंने अपनी जंगी तदाबीर से काम लिया। लश्कर को ये हुक्म दिया कि हर कबीला अलहदा अलहदा हो जाए और अलहदा अलहदा होकर ही दुश्मन का मुकाबला करें, ताकि हम देख सकें कि उसने क्या कारहाए नुमाया सर अंजाम दे दिए हैं। इस तदबीर का खातिर ख्वा असर हुआ, हर कबीले ने यह महसूस किया कि अगर उसने इस मौके पर बुजदिली दिखाई और फरार इख्तियार किया तो हमेशा हमेशा के लिए उसकी इज्जत जाती रहेगी। चुनाचे मुसलमानों ने दुगनी बहादुरी से लड़ना शुरू कर दिया। मुसलमान बड़ी बहादुरी से जंग लड़ रहे थे, मगर बनू हनीफा की जानिब से पीछे हटने के आसार मुतलक दिखाई न देते थे, और बदस्तूर मैदान जंग में डटे हुए मुसलमानों पर जोरदार हमले कर रहे थे। हजरत खालिद रजिला ताला अन्हु ने सोचा कि जब तक मुस्लिमा कत्ल ना होगा, बनू हनीफा का जोर कम ना होगा। चुनाचा आपने उसे दावत मुबारजत दी, जो उसने कबूल कर ली। आप आगे बढ़े और उसके सामने बाज ऐसी शरायत सुलह पेश करनी शुरू की जो सरासर उसी के हक में जाती थी। हर शर्त पर मुस्लिमा अपना मुंह इस तरह फेर लेता गोया वो अल्लाह से मशवरा कर रहा है। एक दफा जैसे ही मुस्लिमा ने मुंह मोड़ा, हजरत खालिद रजिला ताला अन्हु उस पर झपट पड़े। मुस्लिमा कोई चारा कार न देख कर भागा और करीब ही एक बाग में घुस गया। अपने सरदार को भागते देख कर बनू हनीफा के पांव उखड़ गए और उन्होंने बेतहाशा भागना शुरू कर दिया। ये हालत देखकर मोहकम अल यमामा ने पुकारना शुरू किया, ए लोगों बाग में दाखिल हो जाओ, ए लोगों बाग में दाखिल हो जाओ। चुनाचा बनू हनीफा उसी बाग में दाखिल होने लगे, और जब दाखिल हो गए तो अंदर से दरवाजा बंद कर लिया गया। लड़ाई का ये अंजाम मुसलमानों को पसंद नहीं था। अभी बनू हनीफा में लड़ने की ताकत बाकी थी, और सबसे अहम बात यह थी कि फितने का बानी मुबानी मुस्लिमा अभी जिंदा मौजूद था। हजरत बरा बिन मालिक रजिला ताला उन्होंने मुसलमानों से कहा कि तुम मुझे उठाकर बाग की दीवार के अंदर फेंक दो, मैं जाकर दरवाजा खोल दूंगा। मुसलमान ये किस तरह गवारा कर सकते थे कि वो अपने एक बुजुर्ग सहाबी को खुद अपने हाथों मौत के मुंह में डाल दें। सबने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस पर उन्होंने कहा, अगर तुम मुझे नहीं फेंकते तो मैं खुद जाता हूँ। ये कहकर एक जस्त लगाई और दीवार पर पहुंच गए। वहां से बाग के अंदर कूदे और लड़ते भिड़ते दरवाजे तक पहुंच गए और उसे खोल दिया। मुसलमानों की फौज तो मुंतजर खड़ी थी, फौरन बाग में दाखिल हो गई। बाग के अंदर शदीद जंग हुई जिसमें मुस्लिमा मारा गया। मुस्लिमा को वहशी जुबैर बिन मौतिम का गुलाम और हजरत हमजा रजिला ताला अन्हों का कातिल और एक अंसारी ने मिलकर कत्ल कर दिया। इसके मारे जाने से बनू हनीफा की हिम्मत पस्त हो गई और वो पस्पा होने लगे। मुसलमानों ने उन्हें हर तरफ से घेर घेर कर कत्ल करना शुरू किया। उनकी लाशों से सारा बाग पट गया। उस दिन लड़ाई में बनू हनीफा के 21,000 आदमी मारे गए, 7,000 अकरबा के मैदान जंग में कत्ल हुए, 7,000 बाग में मारे गए और 7,000 भागने की कोशिश में खेत रहे। मुसलमान शहदा की तादाद 1,000 थी, जिनमें कलामुल्लाह के हाफिज कसरत से थे। शहदा में 360 मुहाजरीन और अंसार भी थे। लड़ाई शुरू होने से पहले मुस्लिमा ने कबीले के एक सरदार मजा बिन मुरारा को 60 आदमियों की एक जमात के साथ बनू आमिर पर शबखून मारने के लिए भेजा था। मजा का मुकाबला इस्लामी लश्कर के मुकदमतुल जैश से हो गया, जिसमें उसके तमाम साथी कत्ल हो गए। मजा गिरफ्तार हो गया। इसके ख्याल से उसे अमान दे दी गई थी कि मुमकिन है आगे चलकर उसके जरिए कोई काम निकल सके। उसे लश्कर के साथ बतौर यरगमाल रखा गया था। जब बनू हनीफा का इस्तेसाल हो गया और मुसलमानों को फतह नसीब हुई, तो मजा ने मौका पाकर हजरत खालिद रजिला ताला अन्हों से कहा, आप ये न समझें कि आपने बनू हनीफा पर फतह हासिल कर ली है। यमामा के शहर में हमारे जंगजुओं की एक भारी तादाद असलहे से लैस अभी तक मौजूद है। वो लोग हर कीमत पर आपका मुकाबला करेंगे। अगर आप लड़ाई से बचना चाहते हैं तो मुझे कुछ देर के लिए शहर में जाने की इजाजत दे दीजिए, ताकि मैं उन्हें सुलह के लिए हमवार कर सकूं। हजरत खालिद रजिला ताला अन्हु ने उसे जाने की इजाजत तो मरहमत फरमा दी, लेकिन ये कह दिया कि सुलह में तुम्हारे आदमियों की जान बख्शी की शर्त शामिल नहीं होगी। इनके मुतालिक जो फैसला हम मुनासिब समझेंगे करेंगे। जब मजा शहर में गया तो उसने वहां सिवाय औरतों और बूढ़ों और बच्चों के किसी को ना पाया। उसने उन्हें जिरा बख्तर पहनाए और सिखा दिया कि वो किले की फसील पर जमा हो जाएं, ताकि मुसलमान उन्हें देखकर धोखा खा जाएं और हमारी तरफ से पेश करदा शराइत पर सुलह कर लें। चुनाचे चुनाचा सबने ऐसा किया। हथियार लेकर जिरा बख्तर पहन कर फसील पर पहुंच गए। उधर मजाहा हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, मेरी कौम आपकी शराइत पर सुलह नहीं करना चाहती। मैंने आपसे जो कुछ अहद व पैमान किया था वो इसे कबूल करने के लिए कतन तैयार नहीं। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब फसील की तरफ नजर दौड़ाई तो उन्होंने देखा कि जहां तक निगाह काम करती है फसील पर सिपाही ही सिपाही नजर आते हैं, जो सर तापा लोहे में गर्क हैं और उनके हाथों में तलवारें और नेजे चमक रहे हैं। मुसलमान जंग से उकता चुके थे और उनकी ऐन ख्वाहिश थी कि जो फतह उन्होंने बनू हनीफा पर हासिल की थी उसी पर इक्तफा करें और मजीद जंगो जदल से परहेज करें। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि अगर दोबारा जंग छिड़ गई तो न मालूम क्या अंजाम होगा, इसलिए आपने इस बात पर रजामंदी जाहिर कर दी कि निस्फ मालो असबाब, निस्फ मजरुआ बागात और निस्फ कैदियों को बनू हनीफा के लिए छोड़ देंगे। मजा फिर शहर में गया और वापस आकर हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि वो लोग इन शरायत पर भी सुलह कर लिए रजामंद नहीं हैं, आप चौथाई मालो असबाब लेने पर राजी हो जाएं। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यही मंजूर कर लिया और सुलहनामा लिखा गया। सुलह के बाद जब आप शहर में दाखिल हो गए तो देखा कि वहां औरतें बच्चे और बूढ़े तो हैं लेकिन किसी जवान मर्द का नामो निशान भी नहीं। आपने मुजाह से इस फरेब दही का सबब पूछा तो उसने कहा, मेरी कौम तबाह हो जाती, मेरा फर्ज था कि उनकी जान बचाऊं। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये उजर कबूल कर लिया और सुलह नामे को बरकरार रखा। कुछ अरसे के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का खत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा, जिसमें आपको हुक्म दिया गया था कि आप इस कबीले के हर बालिग शख्स को कत्ल कर दें, लेकिन खालिद सुलह कर चुके थे और सुलह नामे पर उनके दस्तखत सिप्त हो चुके थे। अब आप इसे किस तरह तोड़ सकते थे, चुनाचा आपने खलीफतुर रसूल को अपनी माजूरी से मुत्तला कर दिया जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। सुलह के बाद बनू हनीफा ने इस्लाम कबूल कर लिया। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनका एक वफद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में रवाना किया। जब ये वफद आपकी खिदमत में पहुंचा तो आपने इन लोगों से पूछा, आखिर किस बात पर तुम मुस्लिम कज़्ज़ाब के फरेब में आ गए। उन्होंने अर्ज किया, ए खलीफतुर रसूल, आपको हमारा सब हाल मालूम है। मुस्लिमा ने जो पाखंड फैलाया था उससे ना ही कोई फायदा पहुंचा और ना उसके खानदान और कबीले को। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बाज आयात जो मुस्लिमा के बयान के मुताबिक उस पर नाजिल हुई थी सुनने की ख्वाहिश की। चुनाचा वफ्द ने चंद आयात सुनाई। उन्हें सुनकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बेहद ताज्जुब का इजहार किया और फरमाया, ऐसी बातें तो एक फासिक व फाजिर ही की जबान से निकल सकती हैं। आखिर तुम्हारी अक्लों पर क्या पत्थर पड़ गए थे कि तुम ऐसे शख्स पर ईमान ले आए। बनू हनीफा के साथ जंग व पैकार के बयान को वो कुव्वत व ताकत और सिबात नसीब हुआ जो दूसरे मुदय्याने नबुवत के हिस्से में न आया। हमारे ख्याल में मुस्लिमा की कुव्वत व ताकत के असबाब मंदरजा ज़ेल थे। नंबर एक, रिहाल की ये शहादत कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मुस्लिमा को उनके साथ नबुवत में शरीक किया गया है। जब बनू यमामा ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा हुआ मुअल्लिम भी मुस्लिमा की तस्दीक कर रहा है तो उनके पास शक करने की कोई गुंजाइश न रही और वो कसरत से मुस्लिमा की पैरवी इख्तियार करने लगे। बनू हनीफा के कई लोगों ने सिद्क दिल से मुस्लिमा की नबूवत पर ईमान लाते हुए मुसलमानों से जंग की थी। नंबर दो, बनू हनीफा अपने शहरों और इज्जत व नामूस की हिफाजत की खातिर जंग करते थे। चुनाचा जब फरीकैन में जंग छिड़ने का वक्त आया तो मुस्लिमा कज़ाब के बेटे शुरजील ने बनू हनीफा को मुखातिब करते हुए कहा, आज तुम्हारी गैरत के इम्तहान का दिन है। अगर तुमने शिकस्त खाई तो तुम्हारी बीवियां और बेटियां लौंडियां बनेंगी। अपने हसब व नसब, नंगो नामूस और बीवियों बेटियों की हिफाजत की खातिर दुश्मनों से जंग करो। नंबर तीन, बनू हनीफा अपने इलाके और इसके रास्तों, पहाड़ों और घाटियों से खूब वाकिफ थे लेकिन मुसलमान इस इलाके से बिल्कुल ना वाकिफ थे। जाहिर है कि वो फरीक जो किसी इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो ना वाकिफ फरीक के मुकाबले में दिल जमाई के साथ लड़ सकेगा। नंबर चार, इकरमा को शिकस्त देने के बाद बनू हनीफा की हिम्मतें बढ़ गई थी। इसके बाद जब उन्होंने शुरजील के लश्कर को भी शिकस्त दे दी तो उनकी कुव्वत जुर्रत और हिम्मत में कई गुना इजाफा हो गया और उनमें वो रूह सराइयत कर गई जिसका दूसरे मुदय्या ने नबुवत के पैरोकारों में नामो निशान तक ना था। यही वजह थी कि जब हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन पर हमला किया तो उन्होंने उनका इस दिलेरी और हिम्मत के साथ मुकाबला किया कि अगर अल्लाह ताला का खास फजल शामिल हाल ना होता तो मुसलमानों की शिकस्त में कोई कसर न रह गई थी। इन उमूर की मौजूदगी में ये सवाल पैदा होता है कि जब मुस्लिमा की फतह और कामरानी के इस कदर इसबाब मुजतमे हो गए थे, मजीद बरां उसका लश्कर भी मुसलमानों से कई गुना बड़ा था, तो उसकी शिकस्त की वजूहात क्या थी और वो क्या अवामिल थे जिन्होंने मुसलमानों को कामयाब व कामरान होने में मदद दी। जहां तक हमने गौर किया है वो अवामिल मंदरजा ज़ेल थे। नंबर 1, हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये हुक्म कि हर कबीला अलहदा अलहदा होकर जंग करे ताकि मालूम हो सके कि किस कबीले ने ज्यादा जवांमर्दी और शुजाअत से दुश्मनों का मुकाबला किया और किसने बुजदिली दिखाई, इस कार्रवाई का फौज के दिल पर बड़ा असर हुआ और अहले अरब जिन्हें अपनी बुजुर्गी और शराफत, बहादुरी और शुजाअत पर नाज था, मैदान जंग से पीछे हटने की जुर्रत ना कर सके। नंबर 2, लश्करों के दरमियान खड़े होकर हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दावत मुबारजत देना, आप एक शेर की मानिंद मैदान जंग में खड़े थे, जो शख्स भी आपके सामने मुकाबले के लिए निकलता था जिंदा वापस न जाता था। जब मुसलमानों ने ये देखा तो उनकी हिम्मतें बुलंद हो गईं और उनमें एक नया वलवला और जोश पैदा हो गया। नंबर 3, जब मुस्लिमा कज़्ज़ाब हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने आया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बास शराइत उसके सामने रखी तो उसने इस तरह मुंह फेरा जैसे वो अल्लाह से मशवरा कर रहा है। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला ने इस मौके को गनीमत जाना। आपको पता था कि मुस्लिमा ही लश्कर की जान है, अगर ये मारा गया तो लश्कर की हिम्मत पस्त हो जाएगी, इसलिए आपने फौरन ही उस पर हमला कर दिया। मुस्लिमा बदहवास होकर भागा, उसे भागते देखकर उसके सिपाहियों के भी पांव उखड़ गए और वो भी भागने लगे। मुस्लिमों पर बेखबरी में हमला करने से हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु पर कोई कोई एतराज वारिद नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों में उस वक्त तक एक भी शर्त तय नहीं हुई थी और किसी ने भी दूसरे को अमान और जान बख्शी का यकीन नहीं दिलाया था। नंबर 4, हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुखलिसीन की एक भारी तादाद थी जिन्होंने अपने आप को हमतन अल्लाह की अताअत के लिए वक्फ कर दिया था। उनकी नजरों में मौत एक निहायत हकीर शय थी, वरना वो ना सिर्फ खुद अल्लाह की राह में जाने देने के लिए बेताब थे बल्कि दूसरों को भी इस चीज की दावत देते थे। चुनाचा हुजैफा पुकार पुकार कर कह रहे थे, ए कुरान वालों, कुरान को अपने कारनामों के जरिए जीनत दो। जैद बिन खत्ताब कह रहे थे, ए लोगों, अपनी नजरें नीची रखो और पेशकदमी करते हुए दुश्मन का काम तमाम कर दो। इन लोगों की बदौलत ही जो अपनी जान जाने हथेलियों पर रखे हुए थे मुसलमानों को फतह नसीब हुई। नंबर 5, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुलैद को कुछ फौज के साथ मुसलमानों के अकब की हिफाजत पर मामूर फरमाया था। मुस्लिमा के लश्कर से जंग करने के दौरान में मुसलमानों को ये इत्मीनान था कि उनकी पुश्त बिल्कुल महफूज है और पीछे से दुश्मन उन पर हमला नहीं कर सकता। इस तरह उनकी तमाम तर तवज्जा सामने की तरफ मबजूल रही। नंबर 6, बाज लोगों ने मुस्लिमा की मदद सिर्फ कौमी असबियत की वजह से की थी, हालांकि उन्हें इस बात का यकीन था कि मुस्लिमा अपने दावा नबुवत में सरासर झूठा है। कम अज कम उन्हें इस बारे में शक जरूर था। उनको मुतजलजल करने, उनके दिलों में हैजान बरपा करने और उनके अजायम में रुकावट डालने के लिए ये काफी था। इन अस्बाब के बायस हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कामयाबी और कामरानी की राह साफ हो गई और मुसलमानों के कलील तादाद में होने के बावजूद मुस्लिमा के अजीम शान लश्कर पर फतह हासिल कर ली और मुस्लिमा के फितने को नाबूद कर दिया। बनू हनीफा से फारिग होने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु यमामा की एक वादी में, जिसे अलूबर के नाम से मौसूम किया जाता है, मुकीम हो गए। यहीं पर आपको अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से इराक जाने और फारस को फतह करने का हुक्म मिला। इराक में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की फतूहात, जंगे अबला, 11 हिजरी में जजीरा अरब में हालात सुकून पर आ गए और मुर्तदीन का फितना फरो हो गया तो मुसलमानों ने अपनी तवज्जो इराक की जानिब मबजूल की। रूमी और ईरानी सल्तनतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से ही इस्लामी हुकूमत को मिटा देने की फिक्र में थीं, क्योंकि दुनिया में पहली मर्तबा जजीरा अरब में एक ताकतवर और मुतहदा ताकत नशोनुमा पा रही थी और ये अम्र इन दोनों हमसाया सल्तनतों के लिए सख्त तश्वीश का बायस था। अब तक ईरानी और रूमी सल्तनतों का अरब पर बेहद असर और नफूज था और अरब की सरहदों पर भी जो ईरान और रूम से मिलती थी इन सल्तनतों की बाजगुजार और मुती कुछ रियासतें कायम थीं। अरबों में इस्लाम के जहूर के बाद जो तब्दीली रोनुमा हो चुकी थी और जिस जोश और वलवले से वो नए अजायम लेकर उठे थे, ये दोनों सल्तनतें उसे अपने लिए मौत के पैगाम से कम न समझती थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब मुल्क अरब में इर्तदाद का फितना फैला तो इन सल्तनतों ने इस मौके को अपने लिए बेहद गनीमत जाना। चुनाचो एक तरफ हरकल की फौजें शाम में और दूसरी तरफ ईरान की फौजें इराक में जमा होने लगी। खलीफतुर रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी ईरानियों और रोमियों के अजाइम से पूरी तरह बाखबर थे। आपने इन 11 लश्करों की रवानगी से पहले, जिनका जिक्र इब्तदा में आ चुका है, एक बहादुर तजुर्बेकार और माहिर शख्स मसना बिन हारसा को इराक की जानिब रवाना फरमाया था और इन्हें हुक्म दिया था कि वो इराक पहुंच जाएं। लेकिन शामी फौजों से लड़ाई मोल न लें बल्कि छापे मारकर इराकी रईसों को डराते रहें ताकि उनकी फौजों को अरब पर हमला करने की जुर्रत ना हो सके। जब इर्तदाद का फितना खत्म हो गया तो हजरत मसना बिन हारसा ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिखा कि उनकी मदद के लिए कुछ फौज रवाना की जाए। सवाद अरब को इराक को फतह करने और शाहान कसरा की सल्तनत को खत्म करने वाले अजीम काम के लिए अबू बकर सिद्दीक रज़िला तालान्हो की नजरे इंतखाब हजरत खालिद बिन वलीद रज़िला तालान्हो पर पड़ी। उस जमाने में हजरत खालिद बिन वलीद रज़िला तालान्हो बनु हनीफा से फारिग होकर वादी अलूबर में मुकीम थे और दरबार खिलाफत से मजीद अहकाम के मुंतजर थे। 25 मुहर्रम 11 हिजरी को दरबार खिलाफत से उन्हें हुक्म पहुंचा कि वो अपने लश्कर को लेकर ज़ेरी इराक पहुंचे और अबला की सरहद से यलगार शुरू करें। दूसरी तरफ रियाज बिन असम और यमामा की शोरिशें फरोव करने के बाद नजद में ही मुकीम थे। हुक्म मिला कि वो अपने लश्कर के हमराह शुमाली जानेब से बालाई इराक पर हमला आवर हों और अपनी कार्रवाई मुसीग से शुरू करें। हजरत खालिद बिन वलीद रज़िला ताला अन्हो और अय्याज बिन गनम रज़िला ताला अन्हो दोनों को ये हुक्म भी था कि वो दोनों इन मुसलमानों को साथ लें जिन्होंने इर्तदाद में हिस्सा नहीं लिया। किसी मुर्तिद को फौज में शामिल ना किया जाए, नीज किसी शख्स पर जिहाद के सिलसिले में जबर ना किया जाए। जो लोग खुशी से उनके हमराह इराक जाने पर आमादा हों, सिर्फ उन्हीं को फौज में शामिल किया जाए। इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने, जो हजरत खालिद रज़िला ताला अन्हो और अय्याज बिन गनम की फौजों में शामिल थे, पीछे रहने को तरजीह दी। मजबूरन इन दोनों को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़िला ताला अन्हो से मदद की दरख्वास्त करनी पड़ी। चुनाचा आपने अब्दे गौस हमीरी को अय्याज बिन गनम की इमदाद के लिए, काका बिन उमरो को हजरत खालिद बिन वलीद रज़िला ताला अन्हो की मदद के लिए रवाना फरमाया। इस पर लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ और उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़िला ताला अन्हो से अर्ज किया, आप ऐसे सरदारों की इमदाद के लिए जिनके लश्करों के साथ देना अक्सर आदमियों ने साथ छोड़ दिया है, महज एक एक आदमी रवाना कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़िला ताला अन्हो ने फरमाया, जिस लश्कर में इन जैसे अशखास हों वो कभी शिकस्त नहीं खा सकते। हजरत खालिद रज़िला ताला अन्हो ने इराक रवाना होने से पहले इतमाम हुज्जत के लिए अबला की सरहद के हाकिम हरमुस को एक तहरीदी खत रवाना किया जिसका मजमून ये था, अम्मा बाद, हुरमुस को वाजे हो कि अगर आप लोग सलामती चाहते हैं तो इस्लाम ले आए, अगर इस्लाम नहीं ला सकते तो इस्लामी हुकूमत के मातहत होकर रहने और जिजिया देने का इकरार करें। अगर ऐसा ना करेंगे तो इसका नतीजा अच्छा ना होगा, क्योंकि आपके मुकाबले के लिए ऐसी कौम आ रही है जो मौत को इतना ही पसंद करती है जितना आप जिंदगी को पसंद करते हैं। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमराह 10,000 फौज थी। इराक पहुंचकर मसना बिन हारसा भी 8,000 फौज के हमराह आपसे मिल गए। दुश्मन के करीब पहुंचकर हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया और हर हिस्से को अलहदा रास्ते से कूच करने का हुक्म दिया। एक हिस्से का सालार मसना बिन हारसा को बनाया, दूसरे हिस्से की सरदारी अदी बिन हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हु को दी और तीसरे हिस्से को अपने मातहत रखा। तीनों हिस्सों का मकाम इज्तमा हफीर मुकर्रर हुआ। चुनाचा इन तीनों हिस्सों ने दाएं और बाएं एक दिन की मुसाफत का फासला देकर हफीर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जब हुरमुज ने हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु की आमद की खबर सुनी तो उसने फौरन शहनशाह ईरान अर्दशेर को मदद भेजने के लिए कहा और खुद अपने लश्कर को हमराह लेकर कोआजम रवाना हुआ। ये मकाम खलीज फारस के किनारे बहरीन से बसरा जाते हुए रास्ते में पड़ता है और बसरा से 2 मंजिल के फासले पर वाकई है। यहाँ बेशुमार कुएं हैं जिनका पानी बेहद मीठा होता है। कई शायरों ने इस जगह की तारीफ की है। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि इस्लामी लश्कर का रुख हफीर की जानिब है। वो बिला तवक्कुफ हफीर रवाना हुआ और इस्लामी फौज से पहले वहां पहुंच गया। हफीर बाहिला गांव का चश्मा और बसरा से 4 मील के फासले पर वाकई है। वहां पहुंचकर हुरमुज ने अपने लश्कर की तंजीम की। मुकदमे पर 2 भाइयों कुबास और अनूश जान को मुकर्रर किया जो अर्दशेर अकबर की औलाद में से थे। लश्कर के एक हिस्से ने अपने आप को जंजीरों से जकड़ लिया ताकि कुछ भी हो वो मैदान जंग में ही जमे रहें और भागे नहीं। जब हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुआ कि हुरमुज ने हफीर का रुख किया है तो उन्होंने फौज को काजिमा की जानिब कूच का हुक्म दिया। लेकिन हुरमुज वहां भी उनसे पहले पहुंच गया और पानी के चश्मे पर कब्जा करके नरम जमीन पर डेरे डाल दिए। जब हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां पहुंचे तो उन्हें ऐसी जमीन पर डेरे डालने पड़े जहां पानी न था। जब लोगों ने इसकी शिकायत की तो आपने कहा, घबराओ मत, फरीकैन में से जो बहादुर होंगे वही पानी पर कब्जा करेंगे। जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इराक पर हमला किया तो रद्दे अमल में ईरानी आपके मुकाबले में निकले। ईरानियों की बहुत बड़ी मुनज्जम और जदीद तरीन असलहे से लैस फौज हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार खड़ी थी। सूरत हाल का जायजा लेने के बाद हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु को ईरानी फौज की ये कमजोरी मालूम हुई कि वो नकलो हरकत से बहुत जल्द थक और बहुत जल्द हो जाती है। चुनाचा उन्होंने अबला पर कब्जा करने के लिए ईरानियों के खूब चक्कर लगवाए। कभी हफीर चले जाते, जब ईरानी वहां पहुंचते तो फिर वो काजमा आ जाते। जब यूं ईरानी सिपाह थक कर चूर चूर हो गई और उन्होंने हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुकाबला करने के लिए बाहम इकट्ठे जीने मरने के अहद व पैमान किए और पांच पांच, सात सात और नौ नौ अफराद ने एक दूसरे को जंजीरों में बांध लिया ताकि दुश्मन के मुकाबले में चट्टान बनकर खड़े रहें और राह फरार इख्तियार न कर सकें बल्कि बहादुरी से जमकर लड़ सकें। लेकिन उनकी बदकिस्मती यूं शुरू हुई कि यही जंजीरें उनके लिए बेड़ियां और हथकड़ियां बन गईं। शिकस्त की सूरत में उनकी बाजगश्त और नकलो हरकत महाल हो गई। जख्मी या कत्ल होकर गिरने वाले साथियों के साथ जंजीरों से मुंसलिक फौज अपनी जगह से हिल ना सकी और हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु के जाबाजों ने उनको गाजर मूली की तरह काट कर उनका सफाया कर दिया। इस जंग में जंजीरों के इस्तेमाल ने ही इसको जंगे सलासल यानी जंजीरों वाली जंग के नाम से तारीख के सफात में महफूज कर दिया। लड़ाई शुरू हुई और दोनों तरफ के लोग मैदान जंग में बहादुरी के जौहर दिखाने लगे। लड़ाई जोरों शोर से जारी थी कि हुरमुज ने अपने लश्कर से बाहर निकलकर हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु को दावत मुबारकत दी। हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये दावत कबूल कर ली और हुरमुज की तरफ बढ़े। दोनों में दस्त बदस्त लड़ाई शुरू हो गई। हुरमुज का मकसद खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को दावत मुबारकत देने से ये था कि आपको नरगे में लेकर शहीद कर दिया जाए। उसने अपनी फौज के चीदा चीदा बहादुरों को हिदायत कर दी थी कि जब खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु उसके मुकाबले पर निकल आए तो वो आगे बढ़कर उन पर हमला करके उन्हें शहीद कर दें। चुनाचे जब हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु उसके मुकाबले के लिए निकले तो ये ईरानी बहादुर भी आप पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन इसी असना में आपने अपनी तलवार से हुरमुज का काम तमाम कर दिया और उसके साथियों का को इस बात का मौका दिए बगैर कि वो आप पर हमला कर सके अपने लश्कर में पलट आए। काका बिन उमरू अत-तमीमी ने जब ईरानी सवारों को अपने सिपहसालार की तरफ बढ़ते देखा तो उन्होंने पहले तो एक दस्ता फौज के साथ उन पर हमला किया और उन्हें पीछे हटा दिया। उसके बाद पूरे जोर शोर से ईरानी लश्कर पर टूट पड़े और थोड़ी देर मुकाबले के बाद उन्हें शिकस्ते फाश दे दी। चुनाचे रात तक तमाम मैदान साफ हो गया। लड़ाई के बाद हजरत खालिद रजील तआला ने कूच का हुक्म दिया। चलते हुए तमाम फौज और असबाब के साथ उस जगह पर आए जहां अब बसरा आबाद है, जहां आपने कयाम किया। मसना बिन हारसा को मफरूर ईरानियों के ताकुब में रवाना किया और मौकल बिन मकरन अल मुजनी को अबला भेजा, जहां उन्होंने माले गनीमत और कैदी इकट्ठे किए। आपने माले गनीमत का पांचवा हिस्सा मुजदए फतह के साथ खलीफतुर रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजिला ताला अन्हु की खिदमत में रवाना किया और बाकी हिस्सा फौज में तकसीम कर दिया। सिद्दीक अकबर ने हुरमुस की टोपी हजरत खालिद रजिला ताला अन्हु को मरहमत फरमाई। ये टोपी जवाहरात से मुजयन थी और इसकी कीमत 1 लाख दिरहम थी। बाज़ मौरखीन ने लिखा है कि हजरत खालिद रजिला ताला अन्हु ने सबसे पहले बानकिया, बारोसमा और अलैस का कस्द किया था, लेकिन बाज़ का ख्याल है कि सबसे पहले आप अबला तशरीफ ले गए थे। हमने बावजूद मौखर उज़्ज़िक्र रिवायत को तरजीह दी है। पहली वजह तो यह है कि अक्सर मौरखीन आपकी फौज कशी की इब्तदा अबला ही से करार देते हैं। दूसरे हजरत अबू बकर रजील तआला अन्हु की इस हिदायत से कि हिंदुस्तान की सरहद से हमले का आगाज किया जाए, यही मालूम होता है कि इस्लामी और ईरानी फौजों के दरमियान पहला मार्का अबला के मकाम पर ही हुआ था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजील तआला अन्हु का हुक्म ये था, तुम इराक की तरफ कूच करो, यहाँ तक कि उसके सरजमीन में दाखिल हो जाओ। अपना हमला हिंदुस्तान की उस सरहद से शुरू करो जो अबला के करीब है। जंगी नुक्ता नजर से भी अबला से कार्रवाई का आगाज ज्यादा करीन कयास है, क्योंकि हजरत खालिद रजील तआला अन्हु जैसे माहिर और जहां दीदा शख्स से ये बात बिल्कुल बईद थी कि वो ऐसे मकामात पर हमला करें जहां उनके अकब की हिफाजत ना हो सकती हो और जहां वो बड़ी आसानी से दुश्मनों के नरगे में आ सकते हों। अगर अब बानकिया से जंगी कार्रवाई का आगाज करते तो हुरमुस जैसा फुर्तीला और चुस्त और चालाक शख्स जरूर मुसलमानों की पुश्त की तरफ से हमला करके उन्हें सख्त नुकसान पहुंचाता। अव्वलुल जिक्र मौर्रखीन को इस रिवायत से धोखा लगा है जिसमें मजकूर है कि अबला हजरत फारूक उमर फारूक रजील तआला अन्हो के अहद में अतबा बिन गजवान के हाथों फतह हुआ। अगर ये रिवायत सही मान ली जाए तब भी हमारे मौके पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि इस सूरत में ये मुमकिन है कि अबला पूरे तौर पर इस्लामी फौजों के कब्जे में हजरत उमर रजील तआला अन्हो के अहद में ही आया हो। हमारी राय की तायद बिला जरी से भी होती है। जंगे मजार असना। जब हजरत खालिद रजिला ताला अन्हु की यलगार के मुतालिक हुरमुस का दरबार ईरान में शहनशाह अर्दशेर के पास पहुंचा तो उसने कारिन बिन करियांस को एक जबरदस्त लश्कर देकर हुरमुस की इमदाद के लिए भेजा। कारण मदाइन से चलकर जब मजार पहुंचा तो वहां से हुरमुस का हजीमत खोरदा लश्कर मिला। बाहम मशवरे के बाद यह तय पाया कि अगर इस वक्त ईरानी जमीयत मुंतशिर हो गई तो आइंदा कभी इकट्ठी नहीं हो सकेगी, इसलिए यहाँ मुसलमानों का जमकर मुकाबला करना चाहिए। चुनाचा लश्कर ने मजार के करीब नहरे सनी के किनारे पड़ाव डाला और कारण ने इसे मुनजम करना शुरू किया। अर्ध शेर के बेटे कबाज और अनोज जान जो जंगे अबला में शरीक थे और बचकर निकल आए थे, कारण ने इन्हें मैसरा और मैमना की कमान सौंप दी। जब हजरत खालिद रजील तआला अन्हु के कारण के आने और मजार में जंगी तैयारियां करने की खबर मिली तो आप भी फौज को लेकर मजार रवाना हुए और नहर के दूसरे किनारे पर रुककर अपनी फौज की तंजीम और तरतीब और सफबंदी में मशगूल हो गए। जब हर तरह तैयारी मुकम्मल हो चुकी तो जंग शुरू हुई। ईरानी फौज का सरदार कारन मैदान में निकला और दावत मुबारक दी। उधर से हजरत खालिद रजील तआला अन्हु और माकल बिन आशी उसके मुकाबले के लिए निकले। माकल बिन आशी उसके पास हजरत खालिद रजील तआला अन्हु से पहले पहुंचे और तलवार के एक दो वारों में ही उसका काम तमाम कर दिया। अपने सरदार का यह अंजाम देखकर कुबाज और अनूज जान मैदान में निकले, लेकिन इन दोनों का भी वही अंजाम हुआ जो उनके सरदार कारण का हुआ था। कुबास को आदि बिन हातिम ने और उन अनुज जान को आसिम बिन उमरू रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने जहन्नुम वासिल किया। अपने बड़े बड़े बहादुरों और सालाराना फौज को बुरी तरह कत्ल होते देखकर ईरानी फौज के छक्के छूट गए और इसमें शिकस्त के आसार पैदा होने लगे। मुसलमानों ने इस सूरत हाल से पूरा पूरा फायदा उठाया और ईरानी फौज को घेर कर कत्ल करना शुरू किया। 30,000 ईरानी उस दिन मैदान जंग में मारे गए। अगर ईरानी फौज का बेशतर हिस्सा कश्तियों में सवार होकर नहर के पार ना उतर जाता या बीच में नहर हाइल ना होती, तो उस दिन एक ईरानी का भी मुसलमानों के हाथों बचना मुहाल था। इस जंग में मुसलमानों को कसीर माले गनीमत हाथ आया। माले गनीमत की कसरत का अंदाजा इस अमर से हो सकता है कि एक एक सवार के हिस्से में 30,000 दिरहम आए। फतह के बाद हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मजार ही में कयाम किया और माले गनीमत तकसीम किया। गनीमत का पांचवा हिस्सा फतह की खुशखबरी के साथ सईद बिन नौमान के हाथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में रवाना किया। इन इब्तदाई उमूर से फरागत हासिल करने के बाद आपने मफतूहा इलाके के बंदोबस्त की तरफ तवज्जो फरमाई। इलाके के तमाम लोग जिम्मे करार पाए और उन पर जिजिया लगा दिया गया। जंगे वलजा। जब अरदशेर को मजार में ईरानी फौज की हसरतनाक शिकस्त की खबर मौसूल हुई, तो उसकी बेचैनी की इंतहा न रही। उसने दरबारी ईरान के एक और बड़े सरदार अंदरसगर को एक भारी लश्कर देकर मुसलमानों की पेशकदमी रोकने के लिए रवाना किया। उसने इसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि अंदरसगर के रवाना होने के बाद बहमन जाजविया की सरकर्दगी में एक और लश्कर भेजा। अंदरसगर मदाइन से चलकर कसकर पहुंचा और वहां से वलजा रवाना हो गया। मदाइन शाहान कसरा का सदर मकाम था। कसकर एक वसी इलाके का नाम है जिसका सदर मुकाम वासित है। वासित की वजह तस्मिया ये है कि वो कूफा और बसरा से बिल्कुल मसाफी फासले तकरीबन 50 फरसख पर वाक़े है। वलजर का शहर कसकर के इस इलाके में वाक़े है जो सहरा से मुलहक है। बहमन जाजविया अपनी फौज को लेकर वस्ते स्वात से गुजरा और हीरा और कसकर के दरमियान जितने अरबी उन नस्ल ईसाई बाशिंदे और काश्तकार यानी दहाकीन मिले, सबको अपने साथ लेकर वलजा पहुंच गया। इस तरह अंदर जरगर के पास एक अजीम शान लश्कर जमा हो गया। वो अपने लश्कर की कसरत पर फूला ना समाता था, जब हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु को, जो अभी तक मजार ही में कायम थे, अंदर जरगर के ईरानी लश्कर की अहमद और वलजा में उसके पड़ाव की खबर मिली, तो उन्होंने सुवैद बिन मकरन को लश्कर के अकब की हिफाजत और मफतूहा इलाके की निगरानी के लिए मजार में छोड़ा और खुद अपने लश्कर को लेकर वलजा की जानिब रवाना हुए। करीब पहुंचकर अपने लश्कर को तीन हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से को उन्होंने दुश्मन के मुकाबले के लिए रखा और दो हिस्सों को करीब की नशीबी जमीन में छुपा दिया ताकि बवक्त जरूरत उनसे काम लिया जा सके। इन दोनों हिस्सों की कमान आपने बसर बिन रहम और सईद बिन मुर्रा के सुपुर्द की। हसफबंदी के बाद दोनों लश्करों में जंग छिड़ गई। देर तक घमसान की लड़ाई होती रही। जब हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि ईरानी फौज में थकावट के आसार जाहिर हो रहे हैं, तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी इस फौज को, जो कमीन गाहों में छुपी हुई थी, मैदान जंग में पहुंच जाने का हुक्म दिया। हुक्म की देर थी, फौज मैदान जंग में पहुंच गई और ईरानियों पर जोरों शोर से हमला कर दिया। ईरानी इस नई मुसीबत को देखकर बदहवास हो गए और हौसला हार बैठे। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते ने सामने से और कमीन गाहों में छुपे हुए दस्तों ने पीछे से ईरानियों को घेर कर कत्ल करना शुरू कर दिया। अंदर जरगर शिकस्त खा कर बुरी तरह भागा और प्यास के मारे सहरा में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया। फतह के बाद हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इलाके के काश्तकारों से कोई तारुज न किया। उनसे सिर्फ जिजिया का मुतालबा किया, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया और वापस अपने अपने इलाकों को चले गए। इस जंग में कबीला बकर बिन वाइल के कई अरबी उन नस्ल ईसाई भी मारे गए थे, जिनमें इनके दो नामवर सरदारों जाबिर बिन बहीरा और अब्दुल अस्वद अजली के बेटे भी शामिल थे। इस वाकये ने इन अरबी उन नस्ल ईसाइयों को आतिश जेर पा कर दिया था। तैश में आकर उन्होंने मुसलमानों से जंग की तैयारियां शुरू कर दी और दोबारा ईरान से मदद के लिए दरख्वास्त की। जंगे उल्लैस। अरब ईसाइयों ने अपना सरदार बनू अजलान के एक शख्स अब्दुल अस्वद अजली को बनाया। दरबारे ईरान से बहमन जाजविया को हुक्म मिला कि वो ईरानियों की भारी जमीयत के साथ ईसाइयों की मदद को पहुंचे। चुनाचा वो फौज लेकर अल्लईस की जानिब बढ़ा और अपनी फौज वहां के हाकिम जाबान के सुपुर्द करके उसे यह हिदायत की कि जहां तक मुमकिन हो सके उसकी वापसी तक जंग का आगाज न किया जाए, और खुद शहनशाह से मशवरे के लिए मदाइन रवाना हो गया। उल्लईस को कूफा के करीब इराकी सरहद पर एक गांव का नाम था। जब हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु को यह खबर मिली कि बनू अजल, बनू तैयम, बनू जबिया और दीगर अरबी नस्ल ईसाई इनके मुकाबले के लिए उल्लीस में जमा हो रहे हैं, तो वो भी अपनी फौज को लेकर उनके मुकाबले के लिए रवाना हो गए। उन्हें ये मालूम न था कि ईसाइयों की मदद के लिए जाबान की सरकर्दगी में एक ईरानियों का लश्कर भी उनके मुकाबले के लिए मौजूद है। आपने आते ही ईसाइयों से लड़ाई छेड़ दी, चूंकि ईसाइयों को ये यकीन था कि जाबान की फौज उनकी मदद के लिए तैयार है और बहमन जाजविया भी एक भारी जमीयत के साथ उनकी मदद को पहुंचने वाला है, इसलिए वो निहायत दिल जमाई से मुसलमानों का मुकाबला करते रहे। कुछ देर तो वो निहायत पामर्दी से मुकाबले में जमे रहे, लेकिन जब मुसलमानों का दबाव बढ़ने लगा तो उन्होंने अपनी मदद के लिए जाबान की फौज की तरफ नजर की। लेकिन जाबान की फौज अपने सरदार की इस हिदायत के बमौजिब कि जब तक बहमन वापस ना पहुंच जाए वो लड़ाई में शिरकत ना करें, निहायत इत्मीनान से दस्तरखान खोले खाना खाने में मशगूल रही और लड़ाई की तरफ उसकी तवज्जो मुतलक ना हुई। ये मंजर देख कर ईसाई फौज घबरा गई। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु की दूरबीन निगाहों ने सूरत हाल का जायजा ले लिया और मौका गनीमत जानकर निहायत जोश व खरोश से भरपूर हमला कर दिया। ईसाई इस हमले की ताब न ला सके और बुरी तरह पस्पा हो गए। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये देख कर हुक्म दिया कि दुश्मनों को जिंदा गिरफ्तार किया जाए। चुनाचा ऐसा ही हुआ और गिरफ्तार शुदगान को नहर के किनारे खड़ा करके कत्ल कर दिया गया। इस मार्के में 70,000 ईसाई और ईरानी कत्ल हुए और तमाम नहर खून से भर गई। लड़ाई के बाद हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुजदाए फतह के साथ माली गनीमत का पांचवा हिस्सा खलीफतुर रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में भेज दिया। साथ ही बनू अजलान के एक शख्स जंदल को भी रवाना फरमाया ताकि उस शख्स की जबानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को इन तमाम कारनामों की मुसद्दका इत्तला मिल सके जो आपने मैदान जंग में अंजाम दिए थे। ये अमर काबिले जिक्र है कि मंदरजा बाला तमाम लड़ाइयां सफर 12 हिजरी में हुई सिवाय जंग अबला के जो मुहर्रम 12 हिजरी में हुई थी। फतह अमगैशिया। उल्लईस के मार्के से फारिग होने के बाद हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु अमगैशिया की जानिब बढ़े। वहां के बाशिंदे खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की आमद की खबर सुनकर भाग गए और जिधर जिसके सींग समाए चल दिया। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अमगैशिया पहुंचकर इसे और इन तमाम बस्तियों को जो इसके इर्द गिर्द थी मिसमार करने का हुक्म दिया। अमगैशिया का शहर हीरा के हम्पल्ला और ऐसन के करीब वाकई था। शहर से मुसलमानों को इतना माल गनीमत हासिल हुआ कि जंगे जातुस्सलासल अबला के बाद भी हासिल नहीं हुआ था। माल गनीमत में हर सवार को 1500 दिरहम मिले। दीगर फौजियों को जो हिस्से मिले वो इसके अलावा थे। जब माल गनीमत का पांचवा हिस्सा फतह की खुशखबरी और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के अजीम व शान कारनामों की खबर खलीफतुर रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को पहुंची तो आपकी खुशी की कोई इंतहा न रही। फरमाया, ए माशरे कुरैश, तुम्हारे शेर ने एक शेर पर हमला कर दिया और उसके भिट में घुसकर उसको मغلوب कर लिया है। औरतें खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बहादुर पैदा करने से आजिज हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस कौल से इस कदर व मंजिलत का पता चलता है जो आपके दिल में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की थी। इस कौल से ये भी मालूम होता है कि आप हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने फन में यगाना रोजगार समझते थे। अमगैशिया की फतह को दरअसल हीरा की तस्खीर की इब्तदा समझना चाहिए। हीरा का मार्का। अमगैशिया के बिल्कुल करीब हीरा का शहर जो कूफा से 3 मील के फासले पर था, वहां के हाकिम मर्जबान अराजबा को जब हजरत खालिद रजिला तालान हो की अजीम शान फतुहात का हाल मालूम हुआ जो उन्हें उल्लैस और अमगैशिया में हासिल हुई थी, तो उसने सोचा कि अब उसकी बारी है। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसे किसी तरह नहीं छोड़ेंगे। इस मुतवक्के खतरे के पेश नजर उसने जंग की तैयारियां शुरू कर दी। सबसे पहले उसने अपने लड़के को इस्लामी फौज का रास्ता रोकने के लिए रवाना किया और खुद भी शहर से निकलकर बाहर डेरे लगा दिए। बेटे ने बाप के हुक्म पर दरियाए फुरात में बंद बांध कर उसका पानी रोक लिया और सारा पानी दरिया से निकलने वाली नहरों में छोड़ दिया। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अजबा की फौज कशी का हाल सुनकर अमवेशिया से चले। दरियाए फुरात पर पहुंचकर तमाम इस्लामी फौज कश्तियों में सवार हुई। तमाम सामान हरब और गनीमतें जो इन्हें पिछली जंगों में हासिल हुई थी कश्तियों में भर ली। इसी असना में ईरानियों ने दरियाए फुरात का रुख तब्दील कर दिया और मुसलमानों की कश्तियां कीचड़ में फंस कर रह गईं। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये देखकर कश्तियों को साजो सामान समेत वहीं छोड़ा और खुद फौज को लेकर निहायत फुर्ती से अराजबा के बेटे की तरफ बढ़े, जो दरियाए फुरात के दहाने पर खड़ा पानी का रुख तब्दील करने के काम की निगरानी कर रहा था। मुसलमानों ने पहुंचते ही उस पर और उसकी फौज पर हमला कर दिया। इब्ने अराजबा इस नागहानी हमले के लिए कतन तैयार न था। उसे वहमो गुमान में भी न था कि मुसलमान यूं यकायक उस तक पहुंच जाएंगे। हमला इस कदर अचानक हुआ था कि इब्ने अराजबा और उसकी फौज का कोई शख्स जिंदा न बच सका। सब वहीं ढेर कर दिए गए और मुसलमानों ने दरियाए फुरात का बंद तोड़कर पानी को दोबारा जारी कर दिया। इसी दौरान में शहनशाह ईरान अर्दशेर का इंतकाल हो गया। अराजबा हाकिम हीरा को अपने बेटे के कत्ल और अर्दशेर की वफात की खबर एक साथ मिली। उसने अपनी खैरियत इसी में जानी कि वह हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के आने से पेशतर ही भाग जाए। चुनाचा उसने ऐसा ही किया। उधर हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हों अपनी फौज लेकर हीरा की तरफ बढ़े और खुद रौनक से आगे गुजर कर अजीयन और कसरा बीज वो जगह जहां अराजबा ने पड़ाव डाला था के दरमियान डेरे डाल दिए। अहालिया ने हीरा अपने किलों और महलात में बंद होकर बैठ गए। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन किलों का सख्ती से मुहासरा कर लिया। जब ये लोग किसी तरह सुलह करने पर आमादा ना हुए तो हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें कहला भेजा कि अगर एक दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपने आप को मुसलमानों के हवाले ना किया तो उनके खिलाफ शदीद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन लोगों ने बजाय सुलह की बातचीत करने के इस्लामी फौजों पर संगबारी शुरू कर दी। मुसलमानों ने भी जवाब में ईरानियों पर तीरों की बौछार करनी शुरू कर दी। सबसे पहले जर्रार बिन अल अजूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लड़ाई शुरू की। इनके बाद बाकी सरदारों ने भी उनकी पैरवी अख्तियार की। तीरों की बौछार से ईरानियों के बेशुमार आदमी हलाक हो गए। ये सूरत हाल देखकर अहले हीरा बहुत घबराए। शहर के पादरियों और राहिबों ने ईरानियों के सरदारों से फरियाद की कि इस खून रेजी की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। अल्लाह के लिए संगबारी बंद कर दो और लोगों को इस मुसीबत से निजात दिलाओ। नाचार किलों और महलात के सरदारों ने सुलह पर आमादगी जाहिर की। उन्होंने इस्लामी फौज के सरदारों को कहला भेजा कि हम आपके पेश करदा 3 बातों में से एक बात कबूल करने के लिए तैयार हैं, इसलिए बराए करम लड़ाई बंद कर दें और अपने सिपा सालार को इसकी इत्तला दे दें। चुनाचा लड़ाई बंद कर दी गई। अपने वादे के मुताबिक सरदारा ने हीरा अयास बिन कबीसा ताई, अदी बिन अदी, इब्ने अकाल और उमरू बिन अब्दुल मसीह अपने अपने किलों से निकलकर मोअज्जिज़ी ने शहर के हमराह इस्लामी फौज के सरदारों के पास पहुंचे, जिन्होंने इन्हें हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास रवाना कर दिया। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारी बारी हर किले के लोगों से मिले और इन्हें मलामत करते हुए फरमाया, तुम पर अफसोस, तुमने अपने आप को क्या समझ कर हमसे मुकाबला किया? अगर तुम अरब हो तो किस चीज ने तुम्हें अपने ही हम कौम लोगों का मुकाबला करने पर उभारा? और अगर अजमी हो तो क्या तुम्हारा यह ख्याल है कि तुम एक ऐसे कौम के मुकाबले में जीत जाओगे जो अदल व इंसाफ करने में अपनी नजीर नहीं रखती? हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये अल्फाज उनकी बेनजीर सियासत पर दलालत करते हैं। इनसे मालूम होता है कि खालिद बिन वलीद बेमिसल सिपासालार होने के साथ साथ एक माहिर सियासतदान भी थे। इसके बाद खालिद बिन वलीद इसके बाद आपने इन्हें फरमाया, हम तुम्हारे सामने तीन बातें पेश करते हैं, इनमें से तुम्हें एक न एक बात कबूल करनी होगी। पहली बात यह है कि तुम दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अगर ये बात कबूल नहीं करते तो जिज्या अदा करने का इकरार करो। अगर ये दोनों बातें नाकाबिले कबूल हैं तो फिर दूबदू लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। हम तुम्हारे मुकाबले के लिए एक ऐसी फौज को अपने हमराह लाए हैं जो मौत की इतनी ही आशिक है जितने तुम जिंदगी के। मस्कूरा सरदारों ने जिजिया देना कबूल कर लिया। 1,90,000 दिरहम सालाना जिजिया पर अहले हीरा से सुलह हो गई। हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सुलहनामा लिख कर उनके हवाले कर दिया। सुलहनामा की इबारत मंदरजा झेल थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो अहदनामा जो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सरदारान हीरा अदी बिन अदी, उमरू बिन अब्दुल मसीह और इयास बिन कबीसा और हीरी इब्ने अकाल से किया है। अहले हीरा ने इस अहदनामे को कबूल कर लिया है और अपने सरदारों को इसकी तकमील के लिए मजाज गर्दाना है। अहदनामे के मुताबिक अहले हीरा को 1,90,000 दिरहम सालाना जिजिया अदा करना होगा जो उनके कैसीन यानी पादरियों और राहिबों से भी लिया जाएगा। अलबत्ता मोहताजों, अपाहजों और तारिकुद्दुनिया राहिबों को माफ होगा। अगर ये जिजिया बाकायदा अदा किया जाता रहा तो अहले हीरा की हिफाजत की सारी जिम्मेदारी मुसलमानों पर होगी। अगर वो हिफाजत करने में नाकाम रहे तो जिजिया नहीं लिया जाएगा। अगर कौल या फेल के जरिए बदहदी की गई तो ये जिम्मेदारी खत्म समझी जाएगी। ये मुहायदा माहे रबीउल अव्वल 12 हिजरी में लिखा गया। अहले हीरा ने जिजिये के अलावा हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु को कुछ तोहफे भी दिए जो आपने माले गनीमत के हमरा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में भेज दिए। आपने हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहला भेजा कि अगर ये तोहफे जिजिये में शामिल हैं तो खैर, वरना इन्हें जिजिये की रकम में शामिल करके बाकी रकम अहले हीरा को वापस कर दो। इन वाकयात के जिम्न में एक पुरलुत्फ वाकये का जिक्र करना दिलचस्पी से खाली ना होगा। शुएल नामी एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान मुबारक से मुसलमानों के हीरा की फतह की खुशखबरी देते हुए सुन रखा था और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की थी कि हीरा फतह होने पर मुझे करामा बिनते अब्दुल मसीह अता कर दी जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर हीरा लड़ाई के बाद फतह हो गया तो तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। जब हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हीरा फतह कर लिया और इसके सरदारों को सुलहनामे की तकमील के लिए अपने पास बुलाया तो शुवेल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा याद दिलाया। कुछ लोगों ने गवाही भी दी कि वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे वादा फरमाया था के किरामा शुएल रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले कर दी जाए। चुनाचा हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सुलह की शराइत में ये शर्त भी पेश की कि किरामा शुएल रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले कर दी जाए। किरामा के खानदान और बाकी कौम को ये शर्त बड़ी गिरा गुजरी, लेकिन किरामा ने उनसे कहा, तुम फिक्र ना करो और सब्र से काम लो। जिस औरत की उम्र 80 साल की हो चुकी है उसके मुतालिक तुम्हें क्या खौफ है? इस नादान ने मुझे मेरी जवानी में देखा था और उसका ख्याल है कि जवानी हमेशा कायम रहती है। चुनाचा किरामा के कहने पर उसके रिश्तेदारों ने उसे हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा दिया। हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे शुएल रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले कर दिया। किरामा ने शुएल रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि एक बुढ़िया तुम्हारे किस काम आ सकती है? बेहतर यह है कि तुम मुझसे फिदिया ले लो और मुझे रिहा कर दो। शुएल ने कहा, मुझे अच्छी बात है, लेकिन रकम मुअय्यन करने का इख्तियार मुझे होगा। जितनी रकम मैं चाहूंगा मुअय्यन करूंगा। किरामा ने ये बात मंजूर कर ली। शुएल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं अपनी माँ का बेटा नहीं हूँ, अगर तुमसे 1,000 दिरहम से कम वसूल करूं। किरामा ने शुएल रजी अल्लाह तआला अन्हु को धोखा देने के लिए कहा कि ये रकम तो बहुत ज्यादा है, ताहम मैं अपने रिश्तेदारों को कहलवाती हूँ, शायद वो इस रकम का इंतजाम कर सकें। चुनाचा इसने अपने रिश्तेदारों के पास पैगाम भेजा कि शुएल रजी अल्लाह तआला अन्हु 1,000 दिरहम लेकर मुझे रिहा करने को तैयार है। ये रकम भेज कर मुझे रिहा करा लो। उन्होंने फौरन 1,000 दिरहम भेज दिए और किरामा को रिहा करा लिया। जब लोगों को इस वाकये का इल्म हुआ तो उन्होंने शुएल रज़ी ताला अन्हु को बहुत बुरा भला कहा। वो कहने लगे, मुझे क्या पता, मैं तो समझता था 1,000 से ऊपर कोई अदद होता ही नहीं। वो हजरत खालिद रज़ी ताला अन्हु के पास आया और सारा माजरा आपसे अर्ज किया कि किस तरह ला इल्मी में उसने 1,000 दिरहम के बदले किरामा को रिहा कर दिया और अब उसे मालूम हुआ है कि अदद 1,000 से ऊपर भी होता है। हजरत खालिद रज़ी ताला अन्हु ने फरमाया, तुम कुछ चाहते थे लेकिन अल्लाह ने कुछ और चाहा। हम तो जाहिर पर अमल करेंगे, तुम जानो, तुम्हारी नीयत जाने। वह तुमने ला इल्मी में ये बात कही या जानबूझकर, अब हम अपने फैसले में कोई तब्दीली नहीं कर सकते। पार्ट नंबर 6 यहाँ मुकम्मल होता है।